जय राम भव कुंज बिहारी जय राम जय राम भव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बलराय धारी जय गोपी जन बलराय धारी जय यशोदनंदन ब्रज धन रंजन यशोदनंदन ब्रज धन रंजन यशोदनंदन यमुना तीरा भन चारी यमुना यमुना तेरा भन चारी यमुना जय राधा उपस्थित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है लगभग 14 दिनों के बाद और सभी लोग धाम से आए हैं लगभग सभी लोग जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम के दर्शन करके आए हैं। आप भी गए थे जय हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा धाम की कृपा और मायापुर धाम भी गए कुछ भक्त लोग तो बड़ा अच्छा रहा पूरा माहौल। और वैसे ये दिन बहुत अच्छे हैं धाम जाने के लिए, बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन गौरांग महाप्रभु का बर्थडे जो हुआ है बच्चों के पेपरों के टाइम पर हुआ है हमारे कोई पेपर नहीं। तो जनरली पंजाबी बाग से जब जाते हैं भक्त लोग तो 400-500 जो जाते हैं वो उसमें कोई होते हैं 3 दिन के लिए जाते हैं, कुछ 4 दिन के लिए जाते हैं, कुछ जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो लोग थोड़ा टाइम लगा पाते हैं। ब्रह्मचारी जो आई वाइफ के डिवोटीज लगभग 15 दिन के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने से किसी ने अटेंड की है परिक्रमा मायापुर की? बस ये भी थी नहीं। तो आप लोगों को चाहिए कि किसी तरह कभी ना कभी उन 7 दिनों में भी जाने का प्रयास करें जब परिक्रमा होती है वहाँ, और उसका भी जो है आनंद उठाएं। पूरे लगभग पूरे विश्व से जो है वहाँ डिवोटीज पहुँचते हैं। और तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है वहाँ पर भी। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं अपनी इस क्लास में कि हम लोग किसी तरह वो अर्ज या वो इच्छा भगवान के धाम को प्राप्त करने की या भगवान को जानने की किसी तरह वो चाह उत्पन्न कर सकें, तो उस चर्चा को लेते हुए हम लोगों ने बात शुरू की थी कि वो जो इच्छा है भगवान के धाम को प्राप्त करने की, उस इच्छा को डेवलप करने से पहले हमें इस संसार के बारे में समझना पड़ेगा कि ये भौतिक जगत जो है जहाँ हम रह रहे हैं और जिस मन से वो इच्छा करनी है उस मन में अभी किस प्रकार के डिजायर्स हैं। तो यही निकल कर आया कि भोग वांछा करे, है ना। जीवात्मा ने भगवान के सम्मुख जब भोग की इच्छा करी तो उसको तुरंत माया ने झपटा और इधर ला के खड़ा कर दिया। तो अब इस संसार में हम लोग की अवधि इतनी लंबी हो चुकी है कि यहाँ के हर बात जो है जो या जो एक बहुत आसानी से हमारे जो स्वभाव जो बन चुका है इंद्र तृप्ति का, वो बड़ा इंटेंस उसकी हमारे हृदय में इच्छा जा चुकी है। अब किसी तरह हम लोगों को वही इच्छा को भगवान कृष्ण भावना में बनाना है। इस पूरे प्रोसेस को साधना भक्ति से लेकर भाव भक्ति और भाव से फिर प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का प्रयास करना, क्योंकि भक्ति को विभक्ति के तीन ही स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज साधना भक्ति, सेकंड स्टेज भाव भक्ति और थर्ड स्टेज जो है वह प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति में भक्त लोग भक्तों का संग करना, अनर्थों की निवृत्ति करना, निष्ठा के स्तर पर पहुंचना, रुचि उत्पन्न करना, आसक्ति भगवान से कथा से रखना, और उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेज की विभक्ति है अर्थात भाव भक्ति में पहुंचता है, और भाव भक्ति के बाद फिर प्रेमा भक्ति में एंटर करता है। तो इन स्टेजेस में हम लोग जिस स्टेज में हैं, हम लोगों को जानना चाहिए वो है हम लोग अभी साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। कई बार हो सकता है आपको इस प्रकार के लोग मिले जो लोग साधना भक्ति का पालन करते करते ऊब जाते हैं, और ये साधना भक्ति को करते हुए उबने का मतलब क्या है कि जब हम लोग भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति के स्तर पर होने वाली घटनाओं की चर्चा करते हैं या राधा कृष्ण की उन अंतरंग लीलाओं की चर्चा करते हैं और उस उद्देश्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं किसी शॉर्टकट वे से ही, तो ऐसे समय में साधना भक्ति करते करते व्यक्तियों को भक्तों को जो है कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और वो समस्याएं जो हैं किस रूप में आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने भी सब गिनाया अधोश्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ विधि निष्ठा रुचि आसक्ति इतनी सारी स्टेजेस जो गिनाई, इसमें इन स्टेजेस में एक तो ज़्यादा स्टेजेस हैं, ऊपर से टाइम भी लगता है, और ज़्यादातर जो समय लगता है हम लोगों को किस स्तर तक लगता है साधना भक्ति में ही अनर्थ निवृत्ति तक जो है सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। और अगर अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि अभी हम आगे चल के जब डिस्कस करेंगे अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति में भी कई स्टेजेस हैं, कई तरह के अनर्थज हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, बट पहले हम ग्रॉस चीजों को समझ लें। भौतिक जगत में रहते हुए कंडीशन सोल इतना आदि हो चुका है इस संसार में सुख को भोगने के लिए, ये लॉर्डिंग ओवर बोलते हैं शब्द कि प्रभुत्व जमाना, इतनी अधिक तरह से ये हमारे हृदय में प्रवेश कर चुका है कि जैसे नदी का एक स्वभाव है ऊपर से नीचे की तरफ बहना, और फिर ये नदियां कहां मिलती हैं जाकर समुद्र में मिलती हैं। भक्त लोग और इवन भगवान एक एग्जांपल दे रहे हैं कपिल मुनि अपनी माता देवती को कि जिस प्रकार शुद्ध भक्ति किसे बोलते हैं कि जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर उसके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति ऐसा स्वतः ही आकर्षण बढ़ जाए। किस प्रकार? जिस प्रकार नदी या नदियां समुद्र की ओर स्वतः ही भागती हैं, उनको रोकने का भी प्रयास करो तो वो नदियां फिर भी कहीं ना कहीं से जगह बनाकर समुद्र की ओर जाती है। तो ये स्वभाव बन जाता है। जैसे कई बार हम आत्मा की स्वभाव की बात करते हैं कि आत्मा का धर्म है चीनी का है मीठा करना, अग्नि का है ऊष्मा देना, सोल का है सेवा करना। उसी प्रकार जब ये नदी का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कुंती महारानी ने भी प्रथम स्कंद में जब चर्चा होती है तो प्रार्थनाओं में वो यही कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा जो संबंध मेरे परिवार वालों से है, मेरे बच्चों से और मेरे संबंधियों से जो मेरी अटैचमेंट्स हो गई हैं इस जीवन को जीते हुए, तो क्या करें कि इन सारी अटैचमेंट्स को काटो, क्योंकि उनकी स्थिति अब ऐसी है कि उस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि हमारे मन में भक्ति को लेकर जो फिल्म बनी हुई है वो ये कि एक सुंदर हंसता खेलता अच्छा परिवार विद ऑल द कंफर्ट्स जो आजकल के समाज में दिखते हैं। क्या क्या कंफर्ट्स दिखते हैं? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चे कहना मानने वाले, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इनका भी लुत्फ उठाएं और सारे लोग ये भी बोलें कि ही इज अ वेरी गुड डिवोटी, ये भक्त अच्छा है। और भक्ति में आगे बढ़ने का क्या क्राइटेरिया समझते हैं हम लोग? किन किन लक्षणों को देख के हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति अच्छी कर रहा है? कि जब उसको कोई कष्ट ना आ रहा हो, दैहिक हो चाहे मानसिक, और उसके पास उसकी संपन्नता भी बढ़ रही हो, समझ रहे, उसका मटेरियल ऑपुलेंस भी बढ़ रहा हो, तो हमें लगता है अपनी दृष्टि से देखने पर कि यह व्यक्ति एडवांस कर रहा है और हम भी फील करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर तो कोई व्यक्ति सच में सीरियस है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी का भी अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब फैक्ट्री में आग लगी तब उन्होंने श्लोक कोट किया था जिसका मतलब था कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूं तो क्या करता हूं, उसका धन छीन लेता हूं। इस श्लोक में आगे लिखा है कि उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो उसे दूरी बना लेते हैं, वो उसको उनको कंडेम करती है, क्या व्यक्ति है हमारे पास ना आ जाए मांगने के लिए। और जब वो इस प्रकार देखता है कि वो लोग जो पहले जब मेरे पास धन था सब मुझे पूछा करते थे, अब अचानक दूर हो गए, तो फिर उसका क्या आसरा बचता है ऐसे व्यक्ति का? केवल भगवान। और इस श्लोक को तो वक्ता कोट करते हुए भी बहुत डरता है क्योंकि हृदय को विदीर्ण करने वाला है। मम्मी की बात छोड़ो, मम्मी तो पता नहीं कितनी भक्ति करते हैं, उतने लेक्चर सुनती है, मैं तो लेक्चर सुनने वाले की बात कर रहा हूँ। जो भक्त लोग पूरे के पूरे कंफर्ट जोन में माला कर रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोगों के दिमाग में एक सेट है आइडिया कि भक्ति का मतलब क्या, भक्त कैसा होना चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, बच्चे भी कहना मान रहे हैं, बच्चे फर्स्ट भी आ रहे हैं, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, हर तरह का ऑपुलेंस भी हमें मिलता जा रहा है, तो भक्ति अच्छी चल रही है। जबकि भगवान का कहना है कि मैं अपने भक्त पर जब कृपा करता हूं तो उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो मैंने बताया कि वक्ता लोग बोल देते हैं स्टेटमेंट को और जितने भी लोग बैठे होते हैं उसमें से हार्डली मतलब बहुत कम परसेंटेज होता है जो इस चीज को अप्रिशिएट कर पाता है, बहुत कम लोग। कारण क्या होता है इसका कि कुंती महारानी जैसी स्टेज किसी की नहीं है, और अगर कोई प्रोग्रेसिव सीरियस डिवोटी है तो वो उसको अप्रिशिएट कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। कुंती महारानी कह रही है मेरे परिवार से संबंधित मेरे जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको खत्म कर दीजिए। इसलिए कई बार आपको लोग मिलते होंगे, पूजी हम लोग तो चाहते हैं ये भी खत्म हो जाए वो भी हो जाए, ऊपर से बोलते हैं कि हम तो सच में चाहते हैं भक्ति करना, बस ये ना अष्टावक्र थे ना, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया। वो उनका शरीर कई जगहों से मुड़ा हुआ था और जब चलते थे तो मतलब कोई भी व्यक्ति इनको देखकर हंस पड़े, मतलब इतना अजीब ढंग से चलते थे। तो एक दिन जब वो उनके महल में थे राजा के, तो उनकी पुत्रियों ने खूब मतलब सेवा कर सब कुछ की, तो उनको अच्छा लगा कि मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ और वरदान भी दिया उनको। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही चल के खड़े होने लगे तो सब लड़कियाँ हंस पड़ी, तो फिर उन्होंने उनको श्राप भी दिया। ये अष्टावक्र जब राजा के साथ थे तो राजा ने कहा तो भाई हम लोग तो राजपाट में लगे हैं, काम धंधों में लगे हैं ना, और ये माया जो है हमें छोड़ती नहीं है, हम तो करना चाहते हैं लेकिन माया हमें नहीं छोड़ती। यही बात सारे करते हैं बाहर आजकल, भक्त लोग भी बोलते हैं हम तो करना चाहते हैं, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन माया हमें नहीं छोड़ती। तो अष्टावक्र ने क्या किया, साथ में तुरंत खंभे पे गए, चिपक गए और कहा मुझे बचाओ, दुनिया बचाओ, मुझे हटाओ इस खंभे से, इसने मुझे पकड़ रखा है। राजा कहते हैं क्या बात कर रहे, खंभे को तो आपने पकड़ा है, खंभे ने थोड़ी आपको पकड़ा है। कहते हैं मैं ये समझाना चाह रहा कि माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने अपने मन की, अपनी इच्छाओं की, अपनी उन सबको पूरा करने के लिए ही इन इच्छाओं को अपने हाथ में पकड़ रखा है, अपने हाथों से पकड़ रखा है। वरना किसी को भक्ति करनी तो करना क्या है, भक्ति करने के लिए तो उसको इन इच्छाओं का त्याग करना है, जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं, अपनी अननेसेसरी डिजायर्स, इच्छाएं जो हमारी हैं और विशेषकर हमारी अटैचमेंट्स को काटना है, ये तो है ना। तो इनको काटेंगे, इनको छोड़ेंगे तो क्या होगा, छूट गई माया। लेकिन मुश्किल है, अष्टावक्र के इस एग्जाम्पल से हमें दिखता है साफ कि हम माया को हमने पकड़ रखा है, कुछ देर के लिए लगता है, फिर बाद में जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो लोग कहते हैं देखो जी ऐसा है, इन्होंने तो सब कुछ अपना छोड़ दिया है, इन्होंने मतलब इशारा किस तरह करो अपनी तरफ, इन्होंने छोड़ दिया, इनका क्या है, हमें तो पूरी गृहस्थी संभालनी है, बिजनेस संभालने हैं, प्रभु जी हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है ना। तो ठीक है लेक्चर होते हैं, ठीक है क्या कर सकते हैं, हर कोई थोड़ी है, वो थोड़ी कर रहा है, वो भी थोड़ी करता है, मैंने उसको देखा है, उसको ये उसकी ये हालत है, उसने इतने साल कर लिए, वो कौन सा आगे बढ़ गया, उसके अंदर तो अब भी है। तो फिर जो ये राग द्वेष की भावना फिर उत्पन्न होती है कि जब भक्त देखता है अरे वो भक्त इतने टाइम से लगा है वो भी ऐसे ही है, वो भक्त वो भी ऐसे ही है, और कोई अच्छी भक्ति कर भी रहा हो मान लो तो फिर भी उसके अंदर छिद्रावेक्षण, मतलब उनके अंदर किसी की चादर में छेद देखना है ना, उसकी पूरे की पूरी क्रियाओं को देखते हुए स्क्रूटनाइजिंगली कोई ना कोई गलती निकाल कर उसको कहेंगे ये ऐसा है। कोई व्यक्ति उसके पास आ गया तुम्हें मालूम ये भक्त कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इसने ये किया ये किया, इतनी सेवाएं की, अरे अरे तुम्हें क्या मालूम, मैं तो उसको कब से जानता हूँ, मैं काफी पहले से जानता हूँ उसको, उनकी सारी हरकतें मुझे मालूम है, उस दिन वो ये कर रहा था, समझ रहे। तो फिर क्या होता, व्यक्ति सुन नहीं पाता किसी की तारीफ भी। तो इस प्रकार हमारा जीवन एक ऐसे कंफर्ट जोन में बीत जाता है कि जो हमें ना तो आगे बढ़ने देता है, और कई कई साल बीत जाते हैं, और कभी कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार पत्नी आगे बढ़ने का कोशिश करती है या कभी पति आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भक्ति में, तो भी जो साथ वाले लोग हैं वो खींचते हैं उसको, भाई क्या पढ़ी तेरे को इतनी, आप ही इतना क्यों आगे बढ़ते हो, उनको देखो वो तो कितने टाइम से लगे हैं अभी भी इतनी माला करते हैं, है ना, देखो अपना बिजनेस भी देख रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, आप भी पढ़ी अपने बिजनेस को कम करने की, छोड़ने की या रिटायरमेंट लेने की। तो इस प्रकार जब कभी हस्बैंड या वाइफ भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को दमन करने की कोशिश करते हैं, इच्छाएं कम करते हैं अपनी, तो फिर क्या होता है, हमारा जो साथ वाला डिवोटी है वही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि क्या होता है, जैसे होता ना वाइफ है तो हस्बैंड को पकड़ लेगी, भाई नहीं करना, क्या दिक्कत है ना, जरूरी, हस्बैंड है तो वाइफ को क्या तो इतना जरूरी आगे पढ़िए, जरूरी नहीं, समझ रहे बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक इसका कारण ये भी है क्योंकि ना गृहस्था की ना ट्रेनिंग है, ना ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग थी। तो जब ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग नहीं थी तो अच्छा गृहस्थ भी कैसे हो सकता व्यक्ति। अब गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी काफी समय के बाद इन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो संस्कार गहरे गहरे पड़ गए उससे भी समस्या है। तो हम लोगों को, हम जिस प्रकार के नाव में जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, इसमें केवल हमें बचा सकती है तो क्या स्वयं कृष्ण हमारी रक्षा कर सकते हैं या भक्तगण हमारी रक्षा कर सकते हैं? दो चीजें। हम असहाय हैं, हम लोग अपने पूरे प्रयासों से भी भगवान की कृपा को अपने बलबूते पर आकर्षित नहीं कर सकते। हम तो केवल बड़े बड़े हमारे जो आचार्य लोग भी हुए हैं उन सब ने हमेशा याचना की है कृपा की। तो याचना की है उन्होंने सब ने, इसलिए हम लोग अपने बलबूते पर इसको अचीव नहीं कर सकते। हमें केवल कृपा की आवश्यकता है और उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हम लोगों को गुरु, साधु और शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। गुरु, साधु, शास्त्र पर ही आधारित इन पर निर्भर रहने का मतलब है कि हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारा मानसिकता, ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं हमारी गुरु, साधु, शास्त्र के कहने पर चले, तो जाके भक्त लोग एडवांस कुछ कर सकते हैं। और चेतना में एडवांसमेंट का साइन बड़ा सिंपल थिंग, उसमें हमें चाहिए कि चेतना हमारी जो है किस प्रकार जो है प्यूरिफाई हो रही है कौन बताएगा? एक स्वयं हम बता सकते हैं कि हमारी चेतना का क्या स्तर है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सबका हृदय, सबको मालूम है कि किसके हृदय में क्या इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कैसी कैसी इच्छाएं हैं और उसका उन इच्छाओं को पूरा करने का कैसे कैसे प्रयास चल रहे हैं। एक तो थोड़ा सा वो बता सकता अपने विषय में, दूसरा गुरु उनको बताएंगे कहां कहां पर वो गलतियां कर रहे हैं, किस किस प्रकार की इच्छाएं उनके अभी भी अंदर है, कितने कितने प्रकार के अनर्थ अभी भी हमारे अंदर जागृत है। जब भक्त लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने ही प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो अपने आप को डिग्री दे चुके होते हैं, ज्यादातर पीडीएस, प्योर डिवोटी सिंड्रोम, कि यस आई एम द बेस्ट, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो बताते हैं वो मुझे मालूम है। इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता कि कोई नई नई इंफॉर्मेशन लिख ली, नई नई इंफॉर्मेशन नोट कर ली, या मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, आई नो बेटर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का एडवांसमेंट में रोक लग जाती है। गुरु के सामने बैठने पर भी व्यक्ति मुंडी हिलाता, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कई बार बोलता भी, समझाता भी गुरु, और इससे क्या होता है कि समझ जाते हैं गुरु की ये ग्रस्त है किस बीमारी से, आई नो बेटर से, कि मुझे, मैं आपसे ज्यादा अच्छा जानता हूं। तो इस प्रकार की स्थिति से क्या होता है, और ऊपर से क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, स्वतंत्र इच्छाएं करना, उनको खुद ही पूरा करना, दूसरा किसी का आश्रय नहीं प्राप्त है, तो जब आश्रय भी प्राप्त नहीं है ऊपर से, मतलब आश्रय का दूसरी लैंग्वेज में माई बाप नहीं हो गई जैसे बोलते हैं लैंग्वेज, किस एक बहुत सुंदर कथा थी इसमें, बट स्टिल चलो छोड़ो उसको बीच में। जब तक व्यक्ति, देखिए भक्ति और भौतिक जगत दोनों अलग अलग चीज है। इस भौतिक जगत में आई एम ए सेल्फ मेड मैन कहकर लोग अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पायलट या एमबीबीएस बोल सकते हैं कि यस मेरे ऊपर कोई नहीं था, मैंने ये मेहनत करी, मैंने वो करी और इस तरह करते करते मैं आज ये बनाऊं, इस मुकाम पे मैं खुद पहुंचाऊं। वैसे तो खुद भी क्या पहुंचेगा, सारे के सारे गुण और प्रारब्ध हैं जो हमें उन चीजों को कराते हैं, बट स्टिल अहंकार में जो है व्यक्ति करता हम इति मन्यते, भगवान ने बताया कि वो अपने को कर्ता मानता है, जबकि सारे का सारा काम किससे हो रहा है, गुणों के तमोगुण रजोगुण सतोगुण के मिश्रण से क्रियाएं हो रही हैं और प्रारब्ध तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो भक्त लोग या साधक लोग किसी के आश्रय में नहीं है, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ है, तो कुछ समय तक तो उनको अच्छा फील होता है जब तक कि मेंटली एंटरटेनमेंट हो रहा है। किस स्तर पर? जय जय भी हो रही है, जैसा करना चाहता हूं या करना चाहता था वैसा हो रहा है, रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, रिकॉग्निशन पहचाना भी जा रहा है अब कि मैं हूं कुछ। तो इस प्रकार के ऐसे वातावरण में रहता व्यक्ति, उसको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, जबकि ये सारी की सारी चीजें एक अनर्थ का काम करती हैं एक भक्ति भक्ति में। इसलिए जब व्यक्ति किसी के आश्रम में रहता है, किसी गुरु के आश्रम में रहता है, जैसे जो एक पूरी हायरार्की है, जैसे कोई नया भक्त है वो किसी के शेल्टर में आता है या कोई भक्ति विशेष लीडर के शेल्टर में आता है, तो हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको डांट सके, जो उसको समझा सके, जो उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगर हमें लगता है कि नहीं मैं मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो उस वो हमारे लिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन है भक्ति में, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ समय के बाद, जैसे जो खासकर प्रचारकों की स्थिति ऐसी होती है कि उनको लगता है कि यस ये तो मुझे पता ही था, मुझे मालूम है आंसर कहां से देखना है, कहां से देखना है, तो इस तरह की स्थिति होती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है भक्ति में। और हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति की बात, तो एक लाइफ में जो चीज पॉसिबल है, एक लाइफ में पॉसिबल है प्रेमा भक्ति। हम ही अपने आचरण से या अपनी क्रियाओं से या अपनी मेंटालिटी से जो एक जन्म में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है, उसको हम लोग कई जन्मों का कोर्स बना देते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए विशेषकर समझने वाली बात यह है कि भक्तों को चाहिए कि वो सब लोग अपने सभी कर्मों को गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर करने और चलने का प्रयास करें। दूसरा, सभी को चाहिए कि इस भौतिक जगत के प्रति हमारी अवेयरनेस और बढ़े कि कैसा है ये भौतिक जगत। और काफी समय हमारी भक्ति को करते हुए, साधना को करते हुए, हम लोगों को यही रियलाइज करने का प्रयास करना है कि ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये भौतिक जगत हमारे लिए रहने के लिए नहीं है। अगर हम यहां पर, किसी ने बोला कि अगर आप भगवान को हंसाना चाहते हो तो उनको अपने फ्यूचर प्लान बताओ और क्या चुटकुला हो सकता है? फ्यूचर प्लान बनाना, यहां पर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं वो करना चाहता हूं, फिर मैं ये बनना चाहता हूं, समझ रहे हैं? तो ये बहुत अजीब बात है। ये पूरी की पूरी क्रिएशन एक स्वप्न की भांति है। इस लिमिटेड टाइम के स्वप्न के अंदर हम, किसी को देह मिला है पुरुष का, किसी को देह मिला है स्त्री का, और इन देह के कारण वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज ए मैन, एज ए वूमन, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिजायर्स डेवलप होती हैं, और उन डिजायर्स के बेसिस से वो पूरा जीवन प्लानिंग करता है और उन कामों को पूरा करने का प्रयास करता है। और ये जो स्वप्न है ये टूटता है तब जब, जिस प्रकार जैसे उसकी शरीर से आत्मा निकल जाए, तो समझ लो स्वप्न टूट गया एक लाइफ का, फिर वहीं के वहीं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने आप को इस भौतिक जगत में इतना गहरा बांध लिया है, ऊपर से जो प्लानिंग्स हैं फ्यूचर को लेकर या और मटेरियल डिजायर्स की तरफ, ये हमारे लिए सारे के सारे शैकल्स वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेड़ियां हैं हमारे लिए, जो कि हमें बांधे रखती है यहां पर। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ही हम लोग इस संस्था में आए हैं। ये संस्था का प्रभुपाद जी ने जो है संगठन इसलिए किया है ताकि हर व्यक्ति को किसी भी देश में जाए, किसी भी नगर में जाए, तो साधु संग प्राप्त कर सके, प्रसाद प्राप्त कर सके और भक्तों का संग ले सके, है ना। भक्तों का संग, प्रसाद की व्यवस्था हो, भगवान का दर्शन, इन सारी चीजों को वो आसानी से कर सके। वो बात अलग है कि हम लाइफ मेंशिप का कार्ड बनाकर रूम ढूंढने जाते हैं वहां, और जब नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, ये इसलिए नहीं था। वो संख्या बढ़ गई है, रूम उतने ही उतने हैं, हमें मिलता नहीं है जी, तो जन लोग ऐसे क्या करें। तो उद्देश्य ये नहीं था इसका, उद्देश्य ये था ताकि हम लोग वहां पर जाकर देखिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह कथा का समय, आरतियों का समय एक ही रखा, ताकि व्यक्ति किसी भी देश में जाए, किसी भी जगह जाए, उसको जो है कथा के बाद प्रसाद, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। कथा वक्त 8 से 9 शाम को, 8 से 9 सुबह, इन सबको श्रवण कर सके। तो हम लोगों के संघ के लिए बनाई है सब चीजें। हम लोगों को 21,111 वसूल नहीं करने। शुरू में लोग इसीलिए जुड़ते हैं, कहां कहां रुकूंगा, कहां कहां जाऊंगा। खैर वो वसूल, वो भी प्रसाद भी सुंदर जाके काम ही करता है उसका कुछ ना कुछ, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मेंटालिटी ऐसी ना हो, भोग वाली मेंटालिटी। तो इस प्रकार जो ये संघ संगठन बनाया प्रभुपाद जी ने, इसका उस दिन गलती से मुझे किसी ने क्लिप दिखाया, उस क्लिप में एक कोई नेता है कहीं का, वो एक लेक्चर दे रहे हैं इस्कॉन के बारे में। वो कह रहा है कि जी आजकल तो विदेशी लोग यहाँ मंदिर बनाते हैं हमारे देश में, लोग अपने मंदिरों में नहीं जाते, उन विदेशियों के मंदिर में जाते हैं और खूब पैसा चढ़ाते हैं। तो वो अमेरिका, वो ब्रिटेन पहले पैसे कैसे ले जाते थे, आजकल मंदिर बना के पैसे ले जाते हैं हमारा। फिर उसने नाम ही बोल दिया, आपने इस्कॉन देखा है ना, इस्कॉन इस्कॉन मंदिर क्या करता है, अब हमारे भगवान हमारे बड़े बड़े मंदिर बना दिए यहाँ पर, और दुनिया आ रही है, हर एक छोटा गरीब आदमी पैसे डालता है, सब पैसे डालते हैं और वो ले जाता है। बेवकूफ था ना, हंस पड़ा बस, क्या करता। और तो नहीं, उसने एक मंदिर का, बेंगलोर मंदिर का भी नाम बोला उसने, कहते तो इस मंदिर से काफी पैसा जा रहा है विदेशों। तो कहने का क्या मतलब है कि प्रभुपाद जी ने ये संग लेने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, इन सब चीजों को डिस्कशन, मच्चिता मदगत प्राणम, भक्त लोग आपस में चर्चा कर सके इन सब चीजों के लिए, तो जाके हम लोग कुछ एडवांस कर सकेंगे। हमारे इस जीवन में, इस छोटे से जीवन में कितना टाइम निकल चुका है प्रभु जी, ये हम लोग लोगों को समझाते हैं, लेकिन सच में हमारे लिए भी ये अप्लाई होती है। लेक्चर्स में भी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास भी कम ही टाइम है। ऐसा नहीं कि खाली ये जिनको सुनना है उन्हीं के लिए कम टाइम है, वक्ता के लिए भी कम टाइम है। और जितना भी समय बचा है, उतने ही समय में हम लोग शुरू में लोगों को बोलते हैं दिन में 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, हम लोग 2 या 3 घंटे ही देते हैं बड़े मुश्किल से। हमारे पास भी उतना ही टाइम है, और उतने ही टाइम में अगर हम लगा के चलें जितना हमको और 20 साल या 30 साल जीना है, उसमें हमारे पास बहुत चंद दिन होंगे या साल कहला सकते, बड़ी मुश्किल से साल भी मुश्किल से बनेगा शायद। तो घंटों का जितना हम देते हैं, उतने में ही चेतना का शुद्धिकरण करना है, उतने में ही जो भी हमारे को सेंसेस मिली हैं उन सेंसेस से भगवान की सेवा करनी है, उसी में भक्तों का संग करना है, कथा का श्रवण करना है, इतने में करना है ये सब। और वो सारी स्टेजेस प्राप्त करनी है जो बताई हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम भक्ति तक, अगर एक लाइफ का टारगेट है। कई बार लोग कह सकते हैं भाई मेरा एक लाइफ का टारगेट नहीं है, अभी चल रहा है, चलने को जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये कम कर रहा हूं पहले मैं जो कर रहा हूं, यही नहीं हो रहा मेरे से, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं अगर आपने सोचे कि मैं पास ही मार्क्स ले आऊं तो फेल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कोई अगर 60-70 सोचता है तो पास हो सकता है, 100 का सोचेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बहुत। तो हम लोगों के पास भी बड़ा लिमिटेड समय है, और लिमिटेड समय में हम लोगों को अपनी गुरु के निर्देश के अनुसार अगर ये क्वालिटी हमने डेवलप कर ली तो हमारा काफी बर्डन खत्म हो जाता है, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, यही क्वालिटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मेरे को लगता है प्रेमा भक्ति तो कम लोग ऐसे ज्यादा सोच मिल सकते हैं। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश, अविद्या दूर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं गुरुदेव, ये क्वालिटी उनके अंदर है। तो हम लोग इस क्वालिटी को अगर डेवलप कर लें, और ये क्वालिटी इतना आसान नहीं कि ठीक है कल से जो बोलेंगे मैं करूंगा गुरु जी, इस क्वालिटी को भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु के निर्देश या गुरु के जो वाक्य हैं, चीते तक कोरिया एक क्या एक होना चाहिए शिष्य जगन्नाथ बोले सुद्र महान। तो हमें जो चाहिए वो ये कि जितना भी समय हम लोगों ने देना है भक्ति के लिए, या जितना भी समय हमारा साधना भक्ति करने के लिए है, उस साधना भक्ति गुरु साधु शास्त्र के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, और पूरे तन मन और धन से भी हम लोग पूरी तरह जो है क्या करें, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। वो जो चाह उत्पन्न करनी है भगवान को प्राप्त करने की, गुरु की इच्छाओं को पूरा करने की, वो तब डेवलप होगी जिस दिन हमारी इस भौतिक संसार से, इस भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न होना शुरू होगा। जिस दिन हमें लगेगा कि सच में जिस जगत में हम लोग हैं यहां कष्ट ही कष्ट है, हम लोगों की सबसे दयनीय स्थिति वो है जब हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ये सबसे दयनीय स्थिति है हमारी। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टाइम पर सब कुछ मिल रहा है, हेल्थ भी ठीक है, और वो चेतना डेवलप नहीं है बट कृष्ण कॉन्शियस के लिए, तो क्या करेंगे उस हेल्दी जीवन से हमसे सिंस ज्यादा होंगे या पुण्य कर्म करेंगे। दैट्स ऑल। दयनीय स्थिति इसलिए भी है क्योंकि वो सिचुएशंस, वो कंफर्ट जोन हमें कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं करता, वो हमें यहीं रहने के लिए बाध्य करता है कि सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम सुख शांति के लिए नहीं आए, पर भक्ति भी हमें सुख शांति के लिए नहीं करनी चाहिए कि बस सुख बना रहे, शांति बने रहे, बस सब कंफर्टेबल चलता रहे, नहीं। तो कुंती महारानी कह रही है विद्या संतता शस्त्र तत्र तत्र जगत गुरु, मुझको कष्ट दीजिए, बस मुझे कष्ट दीजिए ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं हर कष्ट में, क्योंकि कष्ट में स्मरण अच्छा होता है। अगर आपको लगता है कि आप सुख की सिचुएशन में भी अच्छा स्मरण कर सकते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंती महारानी जी एग्जांपल दे रही है कि दुख दीजिए उसमें अच्छा होता है, उसमें आपका दर्शन होता है, आपसे प्रार्थना अच्छी निकलती है। तो यहां पर इस भौतिक जगत में सुखमय जीवन की याचना करना या प्रार्थना करना ठीक नहीं है, हम लोग सुख से बंध जाएंगे, सतोगुण से बंध जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों से ऊपर उठना है। नारद मुनि जी भी नहीं जा पाए थे, जब उन्होंने चतुर्मास में भक्तों की सेवा करी, ज्ञान समझा, माता के देहांत के बाद भक्ति में चले गए, भगवान के दर्शन तक कर लिया भाव की स्थिति में, फिर भी भगवान ओझल हो गए। भगवान ने कहा कि अभी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल डिजायर्स रह गई है, और एक जगह पढ़ने पे मिला तो पता चला कि वो मटेरियल डिजायर्स क्या थे, कि जिन जंगलों में वो गए भगवान की भक्ति करने के लिए तो उनको वातावरण बड़ा अच्छा लगा, वो वातावरण जो था ना सुंदर सुंदर हिमालय पर्वत वादियां, सुंदर वृक्ष फलदार खुशबू, ये सतोगुण वातावरण को बहुत अच्छा लगा, तो उससे अटैचमेंट थी। हम तो सुबह शाम ही चाहते हैं सब अच्छा चले। तो इस प्रकार उनको भी फिर दोबारा प्रयास करना पड़ा, तो भगवान फिर दर्शन, और फिर अब पूरा का पूरा वो पूरे संसार में घूम रहे हैं इस समय प्रचार करने के लिए। तो कहने का क्या मतलब है, जितने भी ये इस प्रकार के हमको एग्जाम्पल मिलते हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि में, इन सब का केवल मात्र एक उद्देश्य है। हम इसे भागवतम पढ़ रहे हैं, ये लोग अभी गीता वीता पढ़ते होंगे, गीता कितने लोग पढ़ रहे हैं अगले भागवतम में है भाई, ठीक। तो प्रयास करें पढ़ने का इन सब ग्रंथों को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, और उसके बाद अगर एक घंटा रोज रीडिंग करेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में हर जगह वही बात लिखी है, आपको लगेगा यही तो कहते हैं हर जगह। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 90% हमारा जो अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड को लेकर है, इन जगहों को लेकर है, सारी की सारी ये हमारी कहते हैं ना अटैचमेंट्स को काटने के लिए है, हर जगह हर लाइन पर रूपा जी यही सब लिख रहे हैं। अपने को आत्मा जानो जो हो। उस धरातल पर जब कर्म करना शुरू करेंगे, सेवा करना शुरू करेंगे, तब जाके हमारी एक चाह डेवलप होगी कि यस मुझे जाना है वापस। और हम सबको अपना प्लेन अकेले उड़ाना है, हम सबको अपनी मेहनत खुद ही करनी है। कई बार हम लोग दूसरों के चक्कर में, उन सब के प्रति हमारी ड्यूटीज हैं, उनको पूरा करना है, लेकिन मेहनत हमें अपने पे खुद करनी है, कृपा की याचना करनी है, तो जाकर हम लोग उस इच्छा को डेवलप कर पाएंगे, ताकि हम लोग भगवान को ठीक प्रकार से इस जन्म में जान सकें और अच्छी स्टेज पर पहुंच सकें। देखिए, एक अच्छा भक्त, सीरियस या प्रोग्रेसिव डिवोटी, निष्ठा तक के स्तर पर अगर किसी तरह पहुंच जाए इस जन्म में, वैसे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि तीन लाइफ चाहिए एक अच्छे भक्त को वापस धाम जाने के लिए, थ्री लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी तो कहते थे एक में भी जा सकते हैं, मेरे पास चाबी है, इतना परसेंट कर लो। प्रभुपाद जी ने बड़े वो कि मेरे पास बैकडोर की है, आप इतना परसेंट भी कर लो चलेगा। लेकिन वो परसेंटेज का व्यक्ति ना बाद में कुछ कहता नहीं, जब जैसे उसका स्तर अच्छा बढ़ता है, निष्ठा तक के स्तर पर आता है भक्ति में, तो इसको सारी चीज समझ आने लग जाती है, और फिर वहां से फिर दौड़ बड़ी आसान हो जाती है। तो कम से कम हम लोगों को जो हमारी जिंदगी के, हमारे लाइफ के, भक्तिमय जीवन के जो सबसे बड़े जो ऑब्स्टेकल हैं, वो ये कि जो मटेरियल डिजायर्स हम बोलते हैं, प्रयास करें अननेसेसरी डिजायर करना बंद करें। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर ये प्लानिंग है। इस जीवन को जितना सिंपल रखेंगे, लाइफ को जितना साधारण और सिंपल रखेंगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ जीने का मतलब, उसके बाद आप आनंद देखिए। कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी चाहिए लाइफ में ज्यादा, जितनी ज्यादा जगह टांग फंसाएंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। चैंटिंग के टाइम, रीडिंग के टाइम, भक्तों के संग के टाइम, लेक्चर हियरिंग के टाइम भर भी वही सब याद आएगा। जितनी कम देनदारियां हैं, जितनी ज्यादा कम समस्याएं हैं, उतना ज्यादा शांत रहेंगे, पीसफुल वातावरण में रहेंगे, उतना अच्छा आप लोग चैंटिंग रीडिंग हियरिंग कर पाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस अननेसेसरी नहीं लेने सर पर, और फिर अपनी मटेरियल डिजायर्स चेक करते रहे, क्या हो रही है, अब कहां जा रहा हूं मैं, किस दिशा में जा रहा हूं, चेक इन बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। भक्ति ने ठाकुर जी कहते थे एकादशी का दिन जो है हमारा इंट्रोस्पेक्शन का दिन होना चाहिए कि मैंने पिछले 15 दिनों में क्या किया, मेरे क्या जो है प्रोग्रेस रही, मेरी मटेरियल डिजायर्स बढ़ी, उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, या मैंने अपने हृदय में कुछ वैराग्य उत्पन्न किया, कुछ नई अचीवमेंट्स उत्पन्न की, कुछ मैंने बुक्स को पढ़ डाला, कुछ चैंटिंग मैंने अधिक कर डाली। तो इंट्रोस्पेक्शन रहनी चाहिए, होना चाहिए हर एकादशी का दिन। तो ऐसे जो है एकादशी के दिन में व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रयास करे इस तरह का करने का। और इंट्रोस्पेक्टिव इसलिए भी होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि आत्म संरक्षण समीक्षण करे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, कि कहीं मैं भौतिक इच्छाओं से घिरा हुआ होकर उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने का तो नहीं कर रहा, भक्ति में कर रहा हूं, चैंटिंग में कर रहा हूं, उनका स्तर क्या है, चैंटिंग के समय कितना अधिक मैं भगवान के पवित्र नामों को सुन पाता हूं, या शुरू करता हूं और खत्म कब होती है पता ही नहीं चलता। कितना मैं जप करते समय मैं लोगों से बातचीत करता हूं, कितनी अजीब बात है। देखिए, भगवान के नामों को जपते हुए आप भगवान को पुकार रहे हो, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, यही मतलब है भगवान के नामों का। हे श्रीमती राधा रानी, हे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं पतित हूं, मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। हम भगवान से बोल रहे हैं, उनके अंतरंग शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाओ। इस मीनिंग हरिनाम का जो मीनिंग है इस महामंत्र का, इसको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि मैं याचना कर रहा हूं भगवान से कि मुझे अपनी सेवा में लगाए। और फिर अपने पोस्चर को देखिए कि मैं किस तरह बैठा हूं, मैं इच्छा कर रहा हूं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, लेकिन उस इच्छा को करते या वो बोलते हुए, मुंह से बोलते हुए, जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे घर में एक नौकर रखा हुआ आपने, ठीक है, वो आपके सामने खड़ा है और बोल रहा है जी मुझे बताओ क्या काम है, मुझे बताओ क्या काम है, और कान में उसने आईपॉड लगा रखा है और डांस कर रहा है, वो कुछ काम है तो बताओ मुझे, कभी कपड़े झाड़ रहा है, क्रीज ठीक कर रहा है, कुछ काम है तो बताओ, फिर कुर्सी पर बैठ के टांग को टांग रखे ऐसे, कुछ काम है तो बताओ, इधर आ बेटा क्या चल, ठीक ठीक कुछ काम है तो बताना जी, सबसे बात कर रहा है वो, फिर बिस्किट खा रहा है, टेबल चाय पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ काम हो तो बताओ, कहीं से कितनी अजीब स्थिति देख रहे। हमारी स्थिति ठीक ऐसी है, हैं हम नौकर किसके, भगवान के नौकर है, और सुबह शाम सेवा मांग रहे हैं 2 घंटे भगवान से, और किस स्थिति में और कैसे मांग रहे हैं, अजीब बात लगती नहीं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, भगवान सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो, मां सेवा रहे लेकिन पूरी दुनिया घुमाए। एक था ना, सच में बहुत दयनीय स्थिति, आप सोच कर देखिए। इसलिए क्या होता है, हमारी बोल कुछ मुंह में राम बगल में तलवार, कारण क्या है कि बोल रहे हैं हे भगवान हे श्रीमती राधा ने अपनी सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, लेकिन चिंतन चल रहा है अपनी सेवाओं का, अपनी इंद्रिय तृप्ति का, अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा का, अपने मान सम्मान का, अपनी पोस्ट का, इनका स्मरण चल रहा है, तो पूरी क्या होगी मुझे बताओ भाई। बाहर भौतिक जगत में तो अगर नौकर आपके सामने खड़ा है हाथ जोड़कर, मन में कुछ चल रहा है उसके, लेकिन अगर बोल रहा है कि मुझे सेवा में लगाओ, तो आपको लगेगा नहीं कुछ, उसके मन की थोड़ी जानते हो आप तो लगा ही दोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, क्योंकि भगवान तो हृदय में सब जानते हैं ना, आपने हाथ जोड़ रखे हैं लेकिन वो हृदय के सारी बातों को जानते हैं कि ये इच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप सोच कर देखिए, मान लीजिए सब लोग बैठ के जप कर रहे हैं, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कौन जप कर रहा है सच में है? ये भी बहुत बड़ी बला है, फोन के मतलब चैंटिंग एकदम फोन होता है हमारे पास, है ना, जैसे भिखारी मिलता है उस पर रेड लाइट पे मिलता है, बात कर रहा फोन पे, बात कर रहा दे दो भाई सब कुछ दे दो, मोबाइल लेकर आया साथ में, कौन सा है आईफोन कोई नहीं देगा उसको कुछ। तो प्रयास कीजिए, देखिए समझ, अगर कृष्ण देख रहे हैं मान लीजिए ऊपर से, और पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में कौन व्यक्ति मेरे धाम जाना चाहता है, आप सोच कर देखिए, जिस तरह हम चैंटिंग करते हैं और भगवान देख रहे हैं हमें कि कौन कौन जाना चाह रहा है सच में, वो कहेंगे श्रीमती राधा रानी कहेंगे भगवान देखो वो सब लोग जब कर रहे हैं, क्यों नहीं इनको अपने पास बुला लेते, कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ अभी दिखाता हूं कि हृदय में क्या है, कहते सब जब कर रहे देखो चलो इनकी बात करो, चलो इनके पास बैठते हैं देखो, अरे इसको ले जाऊं सो रहा है तो ठीक है, इसको उसको तो कर सकते हो, वो तो अच्छी चैंटिंग कर रहा है, चलो उधर चलते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण छोड़ूंगा नहीं उसको, तो मैं वैसे बोला तो देखो क्या चल रहा है इसके मन में, हाँ अगली अच्छा अगली बार ये करूंगा बस, कहते अच्छा, कहते नहीं मतलब सारे नहीं हूँ, ये इनके पास चलते हैं, इनसे पहुंच कर देते हैं, उधर जाओ उनके दिल में ये चल रहा है, कोई माता जी का सोच रहा है, कोई प्रभु जी का सोच रहा है, कोई इधर कनेक्शन सोच रहा है, कोई वो कनेक्शन सोच रहा है, कोई पैसों के बारे में सोच रहा है, कहते बताओ ना किसको ले जाऊं। एक भी व्यक्ति हृदय से ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि हे श्रीमती राधा रानी हे कृष्ण मैं सच में आपके पास आना चाहता हूं। प्रभुपाद जी कहते थे द चैंटिंग सेशन मींस क्राइंग सेशन, कि जब हमको हृदय से रोना पड़ता है, आंखों से आंसू निकलते हैं कि भगवान मुझे सच में चाहिए, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और वो स्थिति के लिए हमें रोना चाहिए, नहीं रोना आ रहा तो फिर इसलिए रो, कि क्यों नहीं रोना आ रहा मुझे, क्यों नहीं मैं समझ पा रहा कि मैं सच में बड़ी दयनीय स्थिति में हूं, क्यों मेरा मन 2 घंटे के जब जब करने का प्रयास करूं तो भी पूरी दुनिया के ख्वाब सब कुछ आ जाते हैं, क्यों उसी समय मेरे दिन में दिमाग में जो है सारी मटेरियल डिजायर्स आती है, क्यों मुझे उसी टाइम सारे काम याद आते हैं, क्यों फोन उसी टाइम बजता है, क्यों मेरा दोस्त उसी टाइम आके सर पर खड़ा हो जाता है, क्यों मैं फिर चर्चा करता हूं किसी की उस समय। एक बोर्ड बनाइए घर पर जिस पे लिखा हो ये 2 घंटे केवल भगवान के नाम के लिए, और उसके सामने जब करें, लोग कहते हैं भगवान के सामने कर लूं इसके सामने कर लूँ, उसके सामने कर लूँ, गैलरी पे कर लूँ, चल के कर लूँ, अरे एक बोर्ड बना लीजिए उसके सामने करिए, जो ये बोर्ड आपको बार बार इंडिकेट करेगा भैया इधर उधर नहीं जाना, इधर ही रहना, नो फोन कॉल, नो मोबाइल्स, नो इंटरनेट एट द टाइम, नो प्लानिंग्स, दो घंटे पैक कर दो बस, मेरी जिंदगी के 24 घंटे में 2 घंटे निकल गए, इसमें मुझे केवल सच में प्रार्थना करनी है और हृदय से प्रार्थना करनी है कि मैं सच में भगवान आपके पास आना चाहिए। प्रॉपर हियरिंग नहीं होगा, प्रॉपर चैंटिंग अगर नहीं होगा तो डिजायर डेवलप नहीं होगा, नहीं फील होगा कि भौतिक जगत कष्टों का या दुखों का घर है, और जब तक यहां पर दुख नहीं लगेंगे, कष्ट नहीं लगेंगे, तो व्यक्ति जाएगा निभाश, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रयास कीजिए। प्रयास दो तरह से होते हैं, एक प्रयास सच में आगे बढ़ने की चाह से, और एक प्रयास केवल एक स्टेटस सिंबल की तरह कि ठीक है हम तो इस्कॉन जाते हैं, है ना, हमारे पास सेवाएं हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है, सब ठीक चल रहा है, इतना भी जल्दी क्या है, तो इतना भी जल्दी क्या है, ये सच में डिस्टर्ब करेगा। और जो सच में चाह डेवलप करना चाहते हैं, देखिए इनसिक्योरिटी हटा दीजिए मन से, ध्यान से, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग ये बोलेंगे, फिर वो ये कहेंगे, घर में ये होगा, खूब क्लेश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप प्रयास कीजिए ठीक प्रकार से, भगवान आपको बुद्धि भी देंगे इन सब चीज़ों को ठीक करने की, और जब हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे तो भगवान कहते हैं योग क्षेम व्याह में हूँ, कि मैं भक्तों के पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है मैं उनको प्रदान करता हूँ। भगवान इतने ज़्यादा क्रूर नहीं है कि सब कुछ छीन लेंगे आपसे सच में, और आपको खड़ा कर देंगे, मतलब एक कपड़े में जाओ ये है तुम, ऐसे स्थिति नहीं आने। भगवान की सोसाइटी 10,000 सालों तक चलानी है, तो उस बीच हम लोगों को ही प्रयास करने पड़ेंगे, और ये प्रयास हमारे सही चेतना में सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ये हमेशा चेक रखना चाहिए। प्रयास करें ठीक प्रकार से चैंटिंग का। देखिए एंटरटेनमेंट और भक्ति में बहुत बहुत ज्यादा बहुत कम मतलब फासला है, अधिकतर जप तप ज्ञान भक्ति सेवाएं मन के धरातल पर होती हैं, हमारी मन हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होती है अधिकतर, तो बस एक, और जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी हो रही है, और एक प्रोग्रेसिव डिवोटी एक अच्छा साधक इन्हीं सेवाओं को अपने भक्ति में सही मार्ग पर चलने के लिए भी कर सकता है, सेम सेवाएं, एक का नुकसान हो रहा है और एक का फायदा हो रहा है। तो फायदा वाली स्थिति जो है, जो व्यक्ति वास्तव में इंट्रोस्पेक्टिव है, जो सच में सही चेतना से आगे बढ़ना चाहता है, जो ये चेक करता है अपने को कि मैं सही चल रहा हूं नहीं चल रहा, इस सेवा को मैं करने जा रहा हूं या कर रहा हूं, इसमें मेरी ईगो को पानी मिल रहा है या सच में मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है इन सेवाओं को करते हुए, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रश्न या जिज्ञासा है?
जैसे आपने बताया कि हमारे सबके साथ लगेजेस हैं, हम जो ढोते हैं, तो उसमें क्या बेटर है, लगेजेस को एक साइड रखना या उसके साथ चलना?
आज तो नहीं बताया मैंने, बट हाँ उससे मिलता जुलता ही है कि हमारे ऊपर जो बर्डन है, देखिए भौतिक स्थिति में रहते हुए भी बड़े बड़े राजाओं ने भी भगवान को प्राप्त किया, तो उनको तो पूरे देश का ही लैगेज था उनके पास, तो अगर देखें तो, लेकिन कहाँ फर्क था, खाली चेतना का फर्क था। जब हमारी चेतना कृष्णमय हो जाती है या हम कृष्णमय चेतना के लिए प्रयास करते हैं, तो वो लैगेज जो है वो लैगेज नहीं लगता, वो भार नहीं लगता। शुद्ध भक्त को अपने से नीचे के जीवों पर केवल दया आती है, और दयावश उन पर कृपा करने के लिए वो उनको अपना संग प्रदान करता है, और उनकी चेतना को भी अपलिफ्ट कर वो भगवान की भक्ति में लगाता है, सिंपल। इसलिए जब बड़े बड़े राजा भी हुए तो उन्होंने पूरी प्रजा को कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास किया। इसी तरह अगर हम जितने भी लैगेज हैं, तो हमारा भी उद्देश्य है कि अपनी चेतना को इस तरह ऊंचा करूं और अपने साथ जितने लोग हैं उनकी चेतना को भी ऊपर करने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो वो फिर लैगेज लैगेज नहीं रहेगा, वो सारे हेल्पफुल हो जाएंगे, वैसा वातावरण बन जाएगा घर। शुरुआत में जो है हमारी भक्ति के स्तर के बढ़ने के साथ साथ हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आएगा। अगर मैं नए आने वाले भक्त को कुछ बोलूं कि नहीं तुम्हारी डिजायर बिल्कुल खराब है, शुद्ध भक्ति की इच्छा होनी चाहिए, तो वो कहेगा बिल्कुल कमाल, मैं इच्छा कर नहीं सकता, मेरे को स्तर ही नहीं ऐसी इच्छा करने का। तो हमारे मन के द्वारा हमारे मन में कई प्रकार की और इच्छाएं आएंगी जो कि स्पिरिचुअल टाइप ही होंगी,
स्पिरिचुअल टाइप, यस।
फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप सारे के सारे सरकारी दुकान नहीं देखने जा रहे शराब की, आपके मन में वो नहीं इच्छा आ रही, आप कुछ और नहीं जा रहे कि मैं सारे सिनेमा घरों में जाऊं, आपकी इच्छा ये है इस समय कि मैं मंदिर में जाऊं, मंदिर में दर्शन करूं, देख कर क्या बना कैसे बना कर। कोई दिक्कत, धाम जाना, धाम जाने की इच्छा होना या इस्कॉन के मंदिर में क्योंकि धाम है उनका दर्शन करना, तो ये गलत डिजायर नहीं है। ये
इसमें दूसरे शहरों में जाना मतलब ठीक है, सीधा जाते वहीं है, रुकते भी वहीं है, वापस भी वापस आ जाते,
कोई बात नहीं, गलत नहीं है,
समझ। शहरों में जाने का अट्रैक्शन रहता है,
मैं भी बता रहा हूँ, ये इच्छा का स्तर हमारा धीरे धीरे साफ हो जाएगा और साफ हो जाएगा। जैसे शुद्ध भक्ति में तो बताया गया कि वृंदावन और मायापुर, इसके अलावा तो कुछ नहीं करनी चाहिए, इनके अलावा तो जाने बेकार है, क्योंकि ये धाम कृष्ण के अंतरंग धाम है, गौरांग महाप्रभु अंतरंग धाम है, और इस धाम के अलावा कहाँ अच्छा करें। और जगह तो कहीं ऐश्वर्य भाव अधिक है, कहीं पर दूसरे रसों की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी जो हमारा स्तर है हम उस स्तर से केवल उसकी बात नहीं कर सकते कि यार उतने अटैच रहे उतने में रहे, हो सकता है जबरदस्ती को बिठा के रखे तो कोई व्यक्ति चला जाए, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में हम लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी इच्छाएं कुछ और देखने की हो सकती थी, लेकिन अभी ये इच्छाएं डाली गई ताकि हम लोग इन सब जगहों को देख देख कर कुछ ना कुछ पुण्य सुकृतियां इकट्ठी और करें, इन धामों में जाकर गंगा में स्नान कर इन सब चीजों, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, और सुकृतियां बढ़ेंगी और पुण्य कर्म बढ़ेंगे, जिससे कि हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जिससे कि हम और अच्छी इच्छा कर सकें। तो धीरे धीरे चेतना का स्तर अच्छा होने से इच्छाओं में और परिवर्तन आएगा, इच्छाएं बदलती जाएंगी जब, क्योंकि अभी तो साधक है ना जी, तो धीरे धीरे ही, लेकिन आने वाले दिनों बुरी इच्छा नहीं हो रही, आपको ये शुक्र मानना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बुरी नहीं है इस तरह की इच्छा, लेकिन टॉप मोस्ट भी नहीं है। हाँ सात्विक है,
जैसे आपने अपना हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ता है। आज सुबह मैं लेक्चर सुन रहा था पंजाबी वाल से, उसमें बता रहे थे कि जैसे घर में एक कमाने वाला है उसकी कमाई से सभी का पालन पोषण हो जाता है, और इसी प्रकार अगर कोई घर में एक भक्त आ गया तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों और आगे आने वाली पीढ़ियों को करा देगा, कैसे करा देगा।
शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब उनके बड़े भाई विश्वरूप फुल टाइम हो गए थे, मतलब सन्यास ले लिया छोटी उम्र में, तो अपनी माता पिता को कंसोल करने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, लेकिन भाई चला गया तो देखिए पिताजी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छा भक्त बनता है शुद्ध भक्त बनता है तो उनकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, तो आपकी भी पीढ़ी तर गई और माता जी की पीढ़ी तर गई, क्योंकि आप अलग अलग परिवार से हो लेकिन आपके योग से संतान उत्पन्न हुई ना जी। तो इस प्रकार हो गए, तो कई बार जो ये आपने बोला कि हमने बोला कि एक प्लेन अपना एक प्लेन खुद ही उड़ाना है, तो वो प्रभुपाद जी ने साफ लिखा पहले कैंटो में कहीं पर प्रपट में खूब दिया है प्रभुपाद जी ने कि आखिरी में अपना उड़ाना है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अपनी भक्ति अपने कर्म खुद लेकर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर कोई शुद्ध भक्त बन रहा है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी या जो और लोगों ने भक्ति शुरू करी उसका उसको फायदा नहीं पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। प्लेन उड़ाने का मतलब क्या है कि फ्यूल इकट्ठा कर लिया, भक्ति ज्यादा करी तो फ्यूल इकट्ठा हो गया, अच्छा एक टेक्नीशियन मिल गया, प्रोजेक्ट एकदम नए लग गए, है ना, बेस अच्छा बना लिया, रनवे इसका अच्छा बना लिया, ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरह का वातावरण तैयार करती है ताकि हम जब हमारी बारी आए अंत में स्मरण करने की बारी आए तो वो हमको खुद ही करना है। तो ये सारा का सारा वातावरण बनाती है बाकी चीज। देखिए ना, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति का अकाउंट अपना अलग है। भाई के शुद्ध भक्ति के कारण कुछ प्रभाव कौन सकता है मेरे को? जैसे हमने बताया कि शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसके 7 पीढ़ियां जाएंगी, शास्त्रों में लिखा है, तो वो जाएंगी कुछ भी हो। ये विचार आया, ये शास्त्रों में लिखा है, ये नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को बोला है, ये ध्रुव महाराज को बोला था, ध्रुव महाराज कहते मेरी मम्मी कहते हो तुमसे पहले जा रही है, उनका प्लेन पहले आ गया था, वो पहले उनको ले जा रहा था, अब उन चैंटिंग की रीडिंग की कुछ नहीं किया, अब जो भी किया वो पहले जा रही है। तो शुद्ध भक्ति का मतलब कि जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से जाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने किसी और आचार्य ने तो साफ साफ बोला कि अगर कोई कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्तम न्यूफाइड डिवोटी जैसे हम बात करते हैं, छोला माला चाणियों का पालन कर रहा है, वो भी 7 पीढ़ियां तार देता है, मध्यम स्तर का व्यक्ति 14 पीढ़ियां तार देता है और उत्तम स्तर का व्यक्ति 21 पीढ़ियां तार देता है, ऐसे भी किसी आचार्य ने गारंटी दी। इंजन बनना है, तो ठीक है ना,
मतलब चिंता नहीं करनी है, बच्चे भक्ति में बढ़ रहे हैं नहीं,
पिंड नहीं छड़ाना। हमारी जो सेवा है, हमारा जो नियत कर्म है, हमारा नियत कर्म यही कहता है कि हमारे को जो ड्यूटीज मिली है पूरी करें, और उन ड्यूटीज को करते हुए जो उनका कर्तव्य स्कूल जाना ये सब करना करना है, प्लस हमारा जो वातावरण, हमारा ऐसा वातावरण बनना जहां पर वो भगवान का नाम का जप कर सकें, वो करें, उनसे करवाने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि जो वातावरण आज समाज का जो बना है वो भी ऐसे पिताओं से बना है जो चाहते थे हमारा बच्चा ये बने वो बने, ऐसे कुछ और बच्चे पिता होंगे तो वो बोलेंगे बच्चों को बेटे को अच्छा भक्त बनना है और ये बनना है, कई लोग टारगेट रखते हैं अच्छे बच्चों के लिए, तो वातावरण भी हमने तैयार करना है। हरे कृष्ण उपस्थित भक्तवृंद की निताय गौर प्रेम।